ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपक कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय हो गुरुदेव श्रीमती राधा रानी की जय श्री बरसाना धाम की जय 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 श्री राधे श्याम हरे कृष्णा सो यस्टरडे All of you helped me to take darshan of Shri Shri Radha Vrindavan Chandra. Today I am giving you darshan of the lotus feet of your Radharani in your temple. It's my great pleasure to procure this from my own stock of the last year. I'm very happy to share this darshan. Let us meditate on the lotus feet of Radharani. Tam Radhika Charanam Anusmarami. Tam Radhika Charana Renum Anusmarami. I meditate on the dust at Sri Radha's lotus feet. Dust that even Brahma, Shiva, Shukadev, Narad, Bhishma, and a host of great saintly persons cannot see. Dust that has limitless power. Dust that at once transforms the Supreme Personality of Godhead. Sri Krishna, Sri Shyam Sundar as Radharani's submissive servant. Sadyo Vashikarana Churunam Ananta Shaktim. So much unlimited power is there in these two lotus feet. That the dust at this lotus feet, when it is touched at the Kapala Pradesh, Bhala Pradesh, forehead of Krishna, he becomes completely mesmerized, he becomes completely subservient, and he becomes controlled by the love of Srimati Radharani. Adhaya murdhani yad apur sudara gopyah kamyam padam priya gunair apipichamullai bhavot savena bhajatam vasakamudhenum tam radhika charanarenum aham smarami. I meditate on the dust of Sri Radha's feet. Main Sri Radharani ke चरण कमलों पर ध्यान करता हूँ. डस्ट दैट बिकम्स कामधेनु काउ, ये जो रजक कण है ये कामधेनु गऊ बन जाते हैं. टू गिव द नेक्टर ऑफ रसा सब भक्तों को ये प्रेम रस का अमृत प्रदान करने के लिए ये रजक कण जो है वो कामधेनु बन जाते हैं। एज द डिवोटी सेलिब्रेट अ फेस्टिवल ऑफ स्पिरिचुअल लव, जब भक्तगण ये दिव्य प्रेम का उत्सव मनाते हैं तो उसमें ये रजक कण हमें अमृत प्रदान करते हैं। प्लेसिंग दिस डस्ट ऑन देयर हेड्स द ब्यूटिफुल गोपीज अटेन समथिंग इवन पीकॉक फेदर का क्राउन कृष्ण यर्न्स टू अटेन। इन रजक कणों को राधा रानी के चरणों के रजक कणों को अपने शीश पर धारण करके वो सुंदर ब्रजांगनाएं वो प्राप्त करती हैं जो प्राप्त करने के लिए मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण भी तड़पते रहते हैं, लालायित रहते हैं। तो इस तरह से मन याद करो श्री राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, इन्हीं चरणों में सब प्रकार की जीवन की उपलब्धियां प्राप्त हैं। इन्हीं का सहारा लेकर श्री कृष्ण भी हमारे हो जाते हैं, इन्हीं का सहारा लेकर श्री कृष्ण हमारे पर कृपा दृष्टि बरसाते हैं। जिनकी कृपा प्राप्त करना बहुत ही कठिन है, नामुमकिन भी कह सकते हैं, वो कृपा कृष्ण की इन चरणों के आश्रय से, इन चरणों के रजक कण ग्रहण करके बड़ी सहजता से वो कृपा प्राप्त हो जाती है। आगे देखिए, ये चरण कमल जो है, इनकी जो आभा है, ये करोड़ों सूर्यों को और चंद्रों को भी लज्जित कर देती है। इन चरणों पर जो नाखून है, इनकी जो आभा है, जो किरण इसमें से निकलती है, इसमें कृष्ण को, गोपियों को और पूरे भक्तों को मोहित कर लेती है। इन चरणों में जो घुंघरू लगे हुए हैं, इन घुंघरू से जब वो चलती है तो वेदों की ध्वनि निकलती है। आइए हम सब मिलकर इन दिव्य चरणों पर अपना ध्यान करें, इनको अपना सर्वस्व बनाएं, क्योंकि यही कृष्ण के आराध्य हैं, यही कृष्ण का साधन है, यही कृष्ण का भजन है। हम देखते हैं कि जब प्रथम रास भगवान ने रचाया था शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में, तो उस समय उन्होंने सभी गोपियों को एक एक अपना रूप प्रदान किया था। अनंत रूपों में श्री कृष्ण भगवान विभाजित हो गए थे गोपियों को आनंद देने के लिए। दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव हैप्पीनेस, विशिष्ट आनंद देने के लिए, सबको विशेष आनंद देने के लिए। लेकिन गोपियों को तथाकथित मान होता है, वो समझती हैं कि मैं इतनी विशेष हूँ कि सब गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण मेरे ही पास आए हैं और तो मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। तो चाहे वो गोपियों में हो या हम जैसे पतित लोगों में हो, जब जब भी कोई मान, अभिमान, अहंकार उत्पन्न होता है तो श्री कृष्ण दूर चले जाते हैं। ये बहुत ही विचार करने लायक वस्तु है कि जहाँ अहंकार और घमंड निर्माण होता है किसी भी बात का, चाहे भक्ति में हमने कुछ प्राप्त कर लिया हो उस बात का, या चाहे आध्यात्मिक जीवन को छोड़कर जो भौतिक दुनिया में हमने प्राप्त किया है, किसी भी प्रकार के घमंड से कृष्ण दूर चले जाते हैं। और जहां नम्रता होती है वहां कृष्ण पास चले आते हैं। तो जैसे गोपियों में ये दिव्य प्रकार का अहम उत्पन्न हो गया तो कृष्ण अंतर्धान हो गए। कुछ समय तक वो राधा रानी के साथ चले, उसके बाद में राधा रानी भी सोच रही थी कि मैं इतनी विशेष हूँ कि सबको छोड़कर भी मेरे साथ चल रहे हैं। तो कहते हैं मैं बहुत थक गई हूँ, अभी मैं नहीं चल सकती, मुझे कंधे पे उठा लो। तो कृष्ण जब उन्हें कंधे पर बिठाने के लिए बैठ जाते हैं और राधा रानी सोचती है कि मैं भी कंधे पर चढ़ जाऊं, उस समय कृष्ण अंतर्धान हो जाते हैं। और फिर कृष्ण के विरह में राधा रानी भी व्याकुल हो जाती है। और उतने में वहां से गोपियां आक्रोश करती हुई आती हैं, तो राधा रानी उनको जाकर मिलती है। सब आचार्य बताते हैं कि राधा रानी ने ऐसे क्यों किया। उसका कारण उनका अहम नहीं था, वो विलाप करती हुई गोपियों को अपना संग देना चाहती थी, इसलिए वो कृष्ण के संग से भी निकल गई और गोपियों को सांत्वना देने के लिए उनके बीच में चली गई। उसके पश्चात श्री कृष्ण राधा रानी और गोपियों के विरह में व्याकुल होकर यमुना किनारे आते हैं और एक सुंदर स्थान है जिसका नाम है इमली तला। उस कल्प वृक्ष के तले बैठ जाते हैं और फिर इन्हीं दिव्य चरणों पर, दिव्य युगल चरणों पर जो उनके सर्वस्व हैं, अपने हृदय के प्रांगण में उनको लेकर उस पर ध्यान करते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं, पूरा ध्यान हृदय के प्रांगण में एकाग्र कर देते हैं और मुख से राधे 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 करते हैं। ये उनका इतना उत्कट, इतना तीव्र और सर्वोच्च ध्यान था कि उनका राधा रानी के नाम और राधा रानी के चरणों पर ध्यान करने से उनका पूरा रूप ही परावर्तित हो गया। वो भी कृष्ण नहीं रहे, वो राधामय हो गए और राधा ही हो गए और राधा का जो सुनहरा पीला रंग है, गोल्डन येलो कॉम्प्लेक्शन, जो उनकी दिव्य स्वर्ण अंग कांति है, वो कृष्ण पर चढ़ गई, यानी राधा रानी का रंग चढ़ गया उनके। और उस राधा रानी के चरण हृदय में, मन में राधा रानी के प्रति भाव, राधा रानी का चिंतन, राधा रानी का नाम उनके मुख में, ये दिव्य अवस्था में कृष्ण को इतना दिव्य अनुभव हुआ, जो सर्वज्ञ होते हुए भी, सब कुछ ज्ञान उनकी तरफ से आते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी, ये ज्ञान का उनके लिए परिचय नहीं था। बहुत ही विशेष बात है ये, जैसे अचिंत भेदाभेद तत्व हम कहते हैं ना, कि एक ही साथ भगवान हमारे जैसे भी हैं और एक ही साथ हम अणु हैं, भगवान भी वो हैं, इस प्रकार का जो भेदाभेद है, ये हमारे गौड़ीय संप्रदाय का स्थायी भाव है, हमारा सिद्धांत इसी तत्व पर आधारित है। तो उसी तत्व को आगे लेकर हम समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण सब कुछ जानते हैं, सर्वस्य चाहम मृगसन्निविष्टो मतः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, सब कुछ उनकी ओर से आता है, सब ज्ञान विस्मृति स्मृति सब वेदों से उनको ही जानना है, सब वेद उनका ही गुणगान कर रहे हैं, वेद वेद के द्वारा उनको हम जान सकते हैं, वेद उन्होंने ही बनाए हैं, जो भी कुछ वेद है या ज्ञान है या श्रुति है, वो सब उनकी तरफ से आती है, तो उनके लिए क्या ज्ञात नहीं है। ब्रह्मा जी के हृदय को भी वो प्रेरित करते हैं, लेकिन फिर भी राधा रानी को उनके साथ प्रेम संबंध करते हुए, राधा रानी को अपना हृदय का प्रेम कृष्ण को देते हुए जो अनुभूति राधा रानी को होती है, वो कृष्ण को नहीं होती है। और पहली बार जब श्री कृष्ण ने उनके चरणों पर ध्यान करते हुए, मुख से उनका नाम उच्चारण करते हुए एकाग्र होकर अपने आप को समर्पित कर दिया, तो इस दिव्य अद्भुत अचिंत्य आनंद का उन्होंने थोड़ा सा अनुभव किया और उस आनंद में वो मैं कृष्ण हूं इस बात को भी भूल गए थे, अपने परम अस्तित्व को भी वो भूल गए थे। कृष्ण का अस्तित्व जो है वो साधारण नहीं है, कृष्ण का अस्तित्व सच्चिदानंद पूर्ण विग्रह है, वो गोलोकेश्वर है, उन्हीं का अस्तित्व इस पूरे सृष्टि का आधार है, वो परम अस्तित्व है, ही सुप्रीम एग्जिस्टेंस। लेकिन वो भी इस झंझावात में, इस तूफान में, इस आंधी में वो भूल गए कि मैं कौन हूं और स्वयं को राधा ही मानने लगे, राधामय होकर इस दिव्य आनंद का अनुभव करने लगे। इस बीच में सब गोपियां आई, कृष्ण राधा रानी इनको लेकर आई सांत्वना करते हुए, और देखा कि एक अद्भुत दृश्य उन्होंने देखा, मोर पंख लगाए हुए, पीताम्बर पहने हुए, जिनके कमर काचनी में मुरली भी लटकी हुई है, ऐसे एक पुरुष को देखा उन्होंने, आंख बंद कर बैठे हुए, ध्यान में लगे हुए, परम आनंद का अनुभव करते हुए, लेकिन उनकी अंग कांति जो है वो स्वर्ण कांति थी, ठीक राधा रानी की तरह। सब गोपियों ने आश्चर्य किया कि कौन व्यक्ति है ये, कभी ऐसे व्यक्ति को पहले ब्रज में देखा नहीं, लगते तो कृष्ण जैसे हैं, लेकिन कृष्ण तो हमारे सांवले हैं, श्याम सुंदर हैं, ये तो स्वर्ण कांति वाले, गौर वर्ण वाले हैं। बहुत चर्चा होने के बाद में सबने कहा, राधा रानी आप ही जाकर उनको इस रहस्य का भेद करना। तो राधा रानी आगे बढ़ती है और बड़ी ही नम्रता से उनको स्पर्श करती है, और जैसे ही स्पर्श करती है, कृष्ण पुनः पूर्ववत अवस्था में आ जाते हैं, धीरे धीरे आंतरिक दिव्य चेतना का दिव्य अनुभव से वो मुक्त होकर बाह्य चेतना में आ जाते हैं, और जैसे वो अंदर से बाहर की यात्रा करते हैं, उनका स्वर्ण कांति गौड़ कांति जो है धीरे धीरे कम कम होते हुए सांवली कांति श्याम कांति जो है वो प्रधान हो जाती है, और जब पूर्णता वो बाह्य चित्र में आते हैं तो पूर्णता श्याम वर्ण के हो जाते हैं, और अपने नेत्र खोलते हैं और देखते सामने श्रीमती राधा रानी दर्शन दे रही है। तो राधा रानी उनको पूछती है क्या रहस्य है, तो श्री कृष्ण कहते हैं आपको छोड़कर मैं रह नहीं पाया, आपके चरणों पर ध्यान किया, आपका नाम का ध्यान किया, उन पर चिंतन किया, आपके अस्तित्व पर अपने आप को निछावर कर लिया मैंने आपकी याद में, तो मेरी ये अवस्था हुई, मैं भी जानता नहीं कि क्या अवस्था हुई, आप ही बताओ। तो राधा रानी कहती है कि आप तो पूरे स्वर्ण कांति वाले बन गए थे, हमारा वर्ण आपने धारण किया था। और कृष्ण कहते यही तो बात है, आपका विचार करते आपका चिंतन करते आपका ध्यान करते मैं आपमय हो गया, मैं आप ही हो गया, कोई अंतर नहीं बचा, और आपने मुझे स्पर्श करके इस दिव्य आनंद के सागर से मुझे बाहर उठाया है, मेरे ध्यान को भंग कर दिया, मेरे दिव्य आनंद को आपने भंग कर दिया है, अब मैं अति व्याकुल हो गया हूँ, अभी अभी मैं ऐलान करता हूँ कि अगले अवतार में मैं आपका ही भाव लेकर अवतरित हो जाऊंगा, और ये जो राधा भाव आपके भाव में जो रहस्य छुपा हुआ है जो मुझे भी पता नहीं है वो मैं अनुभव करने का प्रयास करूंगा। राधा रानी कहती है कृष्ण आपका ये विचार सुनकर ही मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, इसलिए नहीं कि आपको आनंद प्राप्त होगा, लेकिन इस बात से मेरे मन में ये कष्टमय बातें आ रही है, विचार आ रहा है कि जैसे ही मेरा भाव लेकर आप आओगे तो आप इतने भाव विभोर हो जाओगे, अपने आप को खो जाओगे, अभी तो शुरुआत थी आपकी, जब मदमस्त हो जाएंगे मदहोश हो जाएंगे तो आप कंकड़ों में गिरोगे, कांटों में गिरोगे, नदी में गिर जाओगे, कुंड में गिर जाओगे, अपने आप को जख्मी करोगे, पेड़ की शाखाओं से गिर जाओगे, क्योंकि तो आपको आदत है पेड़ पर बैठकर मुरली बजाने की, तो मेरे भाव में आते ही आप हमेशा गिरने लगोगे, बेहोश हो जाओगे, मैं आपको जख्मी करोगे, मुझे ये सहन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं अभी ही ऐलान कर देती हूँ कि जब आप इस भाव में आओगे तब मैं मेरी दिव्य कांति गौर कांति स्वर्ण कांति से आपको ढक दूंगी, आपको आप्लावित कर दूंगी, फिर आपको कहीं भी गिरने पर कोई कष्ट नहीं होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण आए, एक राधा रानी ऐसे व्यक्तिमत्व है, एक राधा रानी ऐसे प्रेम का सागर है, ऐसे अचिंत्य असीम प्रेम का सागर है जिसको समझना कृष्ण के लिए भी मुमकिन नहीं है। तो ये उनका एक प्रयास था, और ये भी सत्य है कि राधा रानी के प्रेम का रहस्य कृष्ण को भी समझना नामुमकिन है, भले उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का अवतार लिया हो, लेकिन राधा रानी के प्रेम के सागर का गौरव दिन ब दिन क्षण ब क्षण बढ़ते जाता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने 48 साल में जो अनुभव किया वो आज उससे भी अनंत गुणित उसकी वृद्धि हो गई है। तो श्री कृष्ण भी हमेशा नित्य लालायित रहते हैं, और आप समझ सकते हैं कि जो अवतारी पुरुष है उन्होंने एक पूरा अवतार इस वस्तु को जानने के लिए खर्च कर दिया है कि ये रहस्य क्या है, यानी कि ऐसा नहीं कि वी आर नॉट द ओनली पीपल हु गेट पजल्ड, हाँ श्री कृष्ण भी ऐसे विस्मय चकित हो जाते हैं, ऐसी वस्तु इस राधा रानी के पास में है, और उसमें से एक है ये राधा रानी के चरण में लगे हुए रजत कर्ण, ये कृष्ण को भी विस्मय चकित और मोहित कर देते हैं, कृष्ण भी एक कठपुतली बन जाते हैं, कृष्ण भी एक कंट्रोल्ड व्यक्ति की तरह बन जाते हैं, वशीकरण सद्यो वशीकरण चूर्णम अनंत शक्ति, ऐसी अनंत शक्ति इन चरणों में। तो जो कृष्ण का साधन है हाँ कालिंदी तट कुंज मंदिर गतो, सदैव कृष्ण कालिंदी के तट पर कुंज मंदिर में जाकर एकांत में अपना ध्यान करते हैं, राधा रानी को याद करते हैं, उनका सर्वस्व है, उनका जीवन का सार है, उनकी हृदय संजीवनी है। आइए हम सब मिलकर राधाष्टमी के उपलक्ष्य में इन चरणों को अपना सर्वस्व अर्पण कर दें, इन चरणों को सर्वस्व अर्पण करने से बड़ी ही सहजता से वो दुर्गम भगवान जो किसी को प्राप्त नहीं होते हैं वो हमें सहजता से प्राप्त हो जाएंगे। अभी राधा रानी के मुख कमल का हम अवलोकन करेंगे। यहाँ पर लिखा है, प्रभुदानंद जी लिखते हैं, ప్రతిక్షణ చమత్కృత చారు లీలా లావణ్య మోహన మహా మధురాంగ భంగీ రాధానాం హి మధురంగ మధురంగ కళా నిధానం అవిర్భవిష్యతి కదా రస సింధుం సారం. పహలే అంగ్రేజీ మే పడతే హై. వెన్ విల్ ద స్వీట్ అండ్ గ్రేస్ఫుల్ నెక్టర్ దట్ ఇస్ రాధారాణి స్పేస్. సబ్ లోగ్ చరణో కా ధ్యాన్ కర్నే కే పశ్చాత్ రాధారాణి కే ముఖ కమల్ కా ధ్యాన్ కీజియే. ఇన్కా జో ముఖ కమల్ హై వో బహుత్ హి సుందర్ మధుర్ ఔర్ గ్రేస్ఫుల్ యానీ బహుత్ హి కమాయ్ కైసే కేతే హై ఉస్కో గ్రేస్ఫుల్ యానీ వెరీ గ్రేస్ఫుల్ అట్రాక్టివ్ ఆకర్షక్ ఉన్కా ముఖ కమల్ హై. వో కైసా హై? వో ఏక్ సాగర్ కీ తరహ హై. వో సాగర్ కైసా హై? హర్ క్షణ ఉస్ సౌందర్య కే సాగర్ మే నయే నయే మాధుర్య కీ లహరే ఆతీ హై. మెనీ వేవ్స్ ఆఫ్ స్వీట్నెస్ కమ్స్, మెనీ వేవ్ ఆఫ్ చార్మ్ కమ్స్. జైసే బహుత్ సుందర్ ఆకర్షక్ వ్యక్తిత్వ హై, ఉన్కీ ఆకర్షకతా కే అనేక లహరే ఆతీ హై, సౌందర్య కీ లహరే ఆతీ హై. ఔర్ ఇస్ సాగర్ సే బహుత్ బహుత్ సుందర్ సుందర్ ఆకర్షక్ లీలాయే ప్రకట్ హోతీ హై. వో సుందర్ చెహరా కబ్ మేరే సామ్నే ప్రకట్ హోగా? ఐసే ప్రబోధానంద్ జీ కహ రహే హై. యత్ కింకరీషు బహుశః ఖలు కాకు వాణీ నిత్యం పరస్య పురుషస్య శిఖండ మౌలై తస్యః కదా రసనిధేర్ వృషభాను జాయస్ తస్యః కదా రసనిధేర్ వృషభాను జాయస్ తత్ కేలి కుంజ భావా భావాంగన మార్జని స్యాం. వెన్ విల్ ఐ బికమ్ ద స్వీపర్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ ఆఫ్ కోర్టియార్డ్ వేర్ సరౌండెడ్ బై మెనీ మేడ్ సర్వెంట్స్ the peacock feather crowned supreme personality of godhead speaks his appeal to the nectar of that shri radha. Shri krishna bhagwan is divya vyaktitva ke samne natmastak hokar apna nivedan prem ka nivedan namra nivedan dene ke liye lalayit rehte hain. Kab main us kunj ki guhari karunga, kab main us kunj ko jhadu lagaunga, swachh karunga, జిస్ కుంజ మే కృష్ణ హాత్ జోడకర్ వినీత హోకర్ ఇన్ చరణో మే ఇస్ వ్యక్తిత్వ కే చరణో మే నలయిత్ హోతే హై, ఇస్ ముఖ కమల్ కే సౌందర్య మే డూబ్ జాతే హై ఔర్ అప్నే ఆప్ కో భూల్ జాతే హై. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. मैं भी सुबह आज इन इन राधा रानी के मुख कमल को निहारते हुए मेरा सुबह का जप कर रहा था, तब ध्यान में आया एक बात, बात को कि नैन सलोने कमल कटोरे हरि नठ खट सू करी बर जोरे वृंदावन धामा లాడలీ రాధా కృష్ణ ప్రియా శ్యామా లాడలీ రాధా. ఇన్కే నయనో మే జో కమల్ కే దల్ కీ తరహ కుశ సౌందర్య హై, ఇస్కో దేఖకర్ కృష్ణ మోహిత్ హో జాతే హై. లేకిన్ జబ్ మే సుబహ్ ఆజ్ జప్ కర్ రహా థా తో ముజే యే ధ్యాన్ మే ఆయా కీ శ్రీ కృష్ణ కే జో చరణ కమల్ జో నేత్ర కమల్ హై उनसे भी अधिक कारुण्य इन नेत्रों में है. हम देख सकते हैं, यहां पर हम देख सकते हैं कृष्ण के नेत्रों को देखिए और राधा रानी के नेत्रों को देखिए. कृष्ण के लिए भी बहुत ही करुणा से भरे हुए हैं, लेकिन राधा रानी जिस करुणा से दर्शनार्थियों को देख रही है, प्रेम से, करुणा से, वात्सल्य से, कृपा से अद्वितीय है. कृष्ण भी उस करुणा को तुलना नहीं कर सकते हैं. तो ये राधा रानी के चरण जो हैं और राधा रानी के नेत्र जो हैं, ये हमारे लिए बहुत ही कल्याणकारी हैं, क्योंकि इन्हीं करुणामय नेत्रों से वो हमको निहारती है और इंतजार करती रहती है कि कब हम जैसे बद्ध जीव उनके शरण में आ जाएं और वो हम सबको उनकी शरण में ग्रहण करें। इन्हीं नेत्रों के परम करुणामय अवस्था से हमें ये आशा उत्पन्न होती है कि हम भी तर जाएंगे। और राधा रानी के मुख कमल में जब वर्णन हम पढ़ते हैं तो उसमें हम सुनते हैं कि राधा रानी जो कुंडल पहनती हैं और वो कुंडल पहनकर जब चलती हैं तो उस कुंडल की जो दिव्य आभा है वो उनके स्वर्णमय गालों पर पड़ती है। वो भी हम वृंदावन चंद्र की राधा रानी के गालों पर देख सकते हैं। उनके जो चित्र विचित्र अलंकार वो पहनती हैं वो सब उनके गालों पर प्रकाश किरणों की पत्रावली बनाते हैं। और विशेष रूप से नखवे सर जादू तो ना सो हर कालिंदी कूल किलो जय जय राधा रमण हरि बोल गौरस से भरे है कपोल जय जय राधा रमण हरि बोल। तो इसमें नखवेसर यानी जो यहाँ पर पहन रखा है जो नाक में से अलंकार बद्ध होता है और वो कर्णों पर चला जाता है इसको नखवेसर कहते हैं। इस नखवेसर में इतना सौंदर्य है कि श्री कृष्ण जैसे इसको देखकर जैसे टोना जिस पर किया हो जादू टोना जिस पर किया हो वैसे मोहित होकर अपना व्यवहार करते हैं अपने आप पर अपने काबू खो जाते हैं। जैसे इसकी आभा जो है वो करोड़ों चंद्रमा को कामदेव को लज्जित करने वाली है। और राधा रानी जब इस नखवेसर को धारण करती हैं तो सभी लोग देखने वाले गोपियां श्याम सुंदर जी सब भावविभोर हो जाते हैं। अभी राधा रानी के जो वस्त्र हैं उनको नीला रंग बहुत पसंद है क्योंकि श्री कृष्ण नीले रंग के हैं वो घनश्याम वर्ण के वस्त्र को पहनती हैं तो उनका जो लहंगा होता है वो नीले रंग का होता है लेकिन जो उत्तरीय वस्त्र होता है इसको हम ब्लाउज कहते हैं वो गुलाबी रंग का होता है इसलिए हमने आज गुलाबी वस्त्र परिधान किए हैं। इसी भाव से कि राधा रानी को गुलाबी रंग बहुत पसंद है और कल हम नीला वस्त्र धारण करेंगे क्योंकि उनको नीला रंग भी पसंद है। तो गोपियां भी बहुत श्रृंगार करती हैं अपने आप को बहुत ही सुंदर बना देती हैं लेकिन भौतिक दुनिया में जब हम अपने आप को सुंदर बनाते हैं तो हम अपना सौंदर्य बढ़ाना चाहते हैं और किसी व्यक्ति को आकर्षित करना चाहते हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करना चाहते हैं अपने शरीर को सजाते हैं जो मलमूत्र पिंड से बना हुआ है। लेकिन जब गोपियां श्रृंगार करती हैं राधा रानी श्रृंगार करती हैं तो उसके पीछे एकमात्र ये भाव होता है कि श्री कृष्ण के नेत्रों को आनंद मिले श्री कृष्ण के आत्मा को आनंद मिले श्री कृष्ण के अस्तित्व को आनंद मिले श्री कृष्ण पुलकित हो जाएं आनंद के सागर में डूब जाएं। इसलिए राधा रानी अपने सौंदर्य को हर क्षण वृद्धिंगत करते रहती हैं। उनका सौंदर्य ही ऐसा है कि हर एक क्षण में श्री कृष्ण के आनंद में श्री कृष्ण के प्रेम में श्री कृष्ण के लिए जो उनकी रति है उसके वजह से उनका सौंदर्य हर क्षण बढ़ते रहता है और श्री कृष्ण के जो भंवरे की तरह है वो इस सौंदर्यमय फूल के इर्द गिर्द हमेशा गुंजन करते रहते हैं इन्हीं में आसक्त रहते हैं इन्हीं के द्वारा सब चीज को भूल जाते हैं। तो ऐसा ही राधा रानी का अस्तित्व जो हमारे जीवन के लिए सहारा है। हम अगर तरना चाहते हैं और तरने की कोई उम्मीद है तो इनके अस्तित्व की वजह से हैं इनके चरणों की वजह से हैं ये सबके आश्रय सबको आश्रय देने वाले हैं। आइए हम सब हृदय से इनका आश्रय ग्रहण करें। श्रीमती राधा रानी की जय हो। अभी श्रृंगार का विषय निकला ही था तो मुझे एक लीला याद आ रही है। वो ये है कि राधा रानी एक बार कृष्ण को मिलने के लिए श्रृंगार कर रही थी और कृष्ण जल्दी पहुंच जाते हैं और वो स्थान का नाम है अंजनोक या अंजन वन जो बरसाने से केवल 2 या 3 किलोमीटर पास में है। तो वो अंजन वन पहुंच जाते हैं और वहां से मैं आ गया हूं ये बताने के लिए मुरली बजाते हैं। अब श्री कृष्ण की मुरली की विशेषता यह है कि श्री कृष्ण की मुरली जो है वो उसमें 8 स्वर निकलते हैं। और हर एक स्वर जो है वो किसी विशिष्ट कार्य के लिए समर्पित हैं। लेकिन आप सोच सकते हैं कि मुरलीधर कृष्ण, मुरली मनोहर कृष्ण जो मुरली वादन उनका पूरे सृजन में प्रसिद्ध है, सबको मोह लेने वाला ऐसा ये जो वाद जो इंस्ट्रूमेंट है मुरली, उसमें एक छेद जो है आठवां स्वर उन्होंने पूरी तरह से राधा रानी को समर्पित किया है। जब वो आठवें स्वर में मुरली बजाते हैं, मुरली वादन करते हैं, तो वो केवल राधा को ही सुनाई पड़ता है और किसी को सुनाई नहीं पड़ता है। तो इस आठवें स्वर में उन्होंने मुरली बजाई और राधा रानी को निवेदन किया कि मैं आ गया हूँ, आप जल्दी आना। तो राधा रानी का थोड़ा श्रृंगार बाकी था, लेकिन जैसे ही कृष्ण पहुंच गए हैं, इस भाव को प्राप्त हो गई, तो वो एकदम व्याकुल हो गई। अरे कृष्ण पहुंच गए, ललिता कृष्ण पहुंच गए, विशाखा कृष्ण पहुंच गए, जल्दी जल्दी करना। और फिर उन्होंने जल्दी जल्दी श्रृंगार पूरा करना आरंभ किया, लेकिन वो इतनी व्याकुल हो गई थी, बीच में उठकर भागने लगे और दौड़कर व्याकुल होकर आतुर होकर वो आंजनों पहुंचती हैं। ललिता विशाखा भी उनके पीछे पीछे भाग रही हैं और आकर बड़े उत्सुकता से श्री कृष्ण के सम्मुख खड़ी हो जाती हैं। तो श्री कृष्ण देख रहे हैं कि उनके कपाल प्रदेश पर स्वेद बिंदु प्रकट हो रहे हैं, दिव्य मणियों की तरह, मोतियों की तरह दर्शन हो रहा है और सांसें ऊपर नीचे हो रही है और बड़ी ही आतुरता, मिलन की खुशी उनके मुख कमल पर विराज रही है। लेकिन श्री कृष्ण उनको देखकर हंस पड़ते हैं और राधा रानी को बड़ा आश्चर्य होता है कि मैं इतनी भाग भाग के आई आपको मिलने के लिए, आप हंस क्यों रहे हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि आप तो इतनी भाग भाग के आई, लेकिन आपने तो आंखों का श्रृंगार किया ही नहीं, आपने काजल तो लगाया नहीं। ओ मैं काजल लगाना भूल गई, मैं तो इतनी व्याकुल हो गई थी, आपकी मुरली बज रही थी तो मुझे रहा नहीं गया, तो मैं ऐसे ही भाग गई, तो उसमें काजल लगाना रह गया। चलो मैं अभी जाकर अभी लौट के आती हूँ काजल लगाकर। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अभी मैं आपको छोड़ नहीं सकता, आप बहुत देर के बाद आई हो, अभी आप वापस जाओगी तो मैं और व्याकुल हो जाऊंगा, आपके काजल की व्यवस्था मैं खुद करूंगा। ऐसे कहते हुए श्री कृष्ण ने वहां पर एक शिला थी उस पर अपनी उंगलियां रगड़ी और उंगलियां रगड़ने से उसमें से काजल उत्पन्न हो गया और वो काजल कृष्ण ने बड़े ही प्रेम से अपने हाथ से राधा रानी के आंखों में लगाया रेखा के रूप में। शब्दजन कहते हैं कि वो जो काजल की रेख है वो मेरी टेक बन जाए, यानी मेरा आश्रय बन जाए, मेरा दिल वहीं अटके और कहीं मेरा दिल नहीं अटके, ऐसे संतजन, ब्रजवासी संतजन कहते हैं। रखियो मुझे वही जो काजल की रेख, रखियो मुझे वही टेक से जो काजल की रेख, यानी आप जब इन काजल लगे हुए नेत्रों से मुझे देखेंगे तो उन कजरीली नजरों से मैं आश्रय प्राप्त करूंगा, ये भाव होगा। तो श्री कृष्ण अपने दोनों अपने कोमल कोमल हाथों से, उंगलियों से उनके आंखों का श्रृंगार करते हैं और उनका श्रृंगार को पूर्ण करते हैं। तो आचार्य बताते हैं कि जब हमारा भाव प्रामाणिक होता है, सरल होता है, समर्पित भाव होता है, नम्र होता है, प्रामाणिक होता है, तो हमारे सेवा में कभी कुछ कमी भी आ जाए तो क्योंकि हमारा भाव बहुत सरल है, निष्कपट है, निर्द्वंद्व है, निस्त्रैगुण्य है, इसके वजह से हमारे सेवा में जो भी अनइंटेंशनल कमी होगी, त्रुटि होगी, वो कृष्ण पूरी कर देते हैं। सबसे ऊंची चीज है भाव, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे भाव की आवश्यकता है। वैसे भी ये जीव अपरिपूर्ण है, जीव में परिपूर्णता नहीं है, लेकिन जब ये अपरिपूर्ण हम जीव जब सरल हृदय से, निष्कपट भाव से, निरपक्ष निरपेक्ष निस्वार्थ भाव से, कृष्ण की समर्पित भाव से सेवा करने का प्रयास करते हैं तो हमारी सेवा में जो भी त्रुटियां हैं उसको श्री कृष्ण पूरी कर देते हैं और परिपूर्ण करके उस सेवा को स्वीकारते हैं। जैसे पुतना दूध पिलाने आई थी माँ बनकर, लेकिन हम जानते हैं कि कैसे विष डाल कर आई थी उसके अंदर, उसमें बहुत त्रुटियां थी, बहुत दोष थे, बहुत पापपूर्ण भावनाएं थी, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण ने केवल वो मातृत्व का भाव स्वीकार किया, उसको परिपूर्ण करके स्वीकार किया और पुतना को मातृत्व का वात्सल्य का परम स्थान दे दिया गोलोक धाम में। तो श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों ही बड़े दयालु हैं और वो प्रामाणिक हृदय जीवों के सब त्रुटियों को परिपूर्ण करके स्वीकार कर लेते हैं, हमारे जीवन को परिपूर्ण कर लेते हैं। तो इस तरह से ये लीला हुई जिसमें सेवा भाव राधा रानी का दिखाई पड़ता है। राधकृष्ण को आनंद देने के लिए पूर्ण सौंदर्य श्रृंगार जो है वो राधा रानी हमेशा कृष्ण के लिए करती है। कल किसी ने प्रश्न किया था कि ललिता के विषय में हमने कहा नहीं, तो हमने उसके बारे में विचार किया कि चाहे जन्मदिन उनका कभी भी हो, राधा रानी के 27 दिन पहले हो, कुछ लोग कहते हैं फरवरी के आसपास है, कुछ लोग कहते हैं कार्तिक महीने में है, लेकिन उनका गुणगान करने के लिए कोई अवरोध नहीं है, क्योंकि उनका गुणगान करने से राधा रानी को प्रसन्नता ही होगी। तो संक्षेप में वर्णन करेंगे कि ये ललिता जो व्यक्तित्व है वो कितनी महान व्यक्तित्व है। कल कुछ वर्णन हमने किया था, आज आगे का वर्णन करेंगे। उनको सुललिता कहा गया है, यानी वो ललित यानी वस्त्र परिधान करने में बहुत निपुण है, वस्त्र परिधान करने में भी निपुण है और वस्त्रों का श्रृंगार कराने में भी निपुण है, यानी कि राधा और कृष्ण को श्रृंगार कराने में वो बहुत निपुण है, इसलिए उनका एक नाम सुललिता भी है। क्या सेवा है उनकी, देखिए बहुत ही उत्कट सेवा है। जिस जगह पर किसका प्रवेश भी नहीं है वहां उनकी सेवा है। कैसी सेवा है, जब राधा रानी और कृष्ण लीला करते हैं, प्रेम की लीलाएं करते हैं, जैसे राधा रानी भागवत के आ रही है, तो अभी विशेष रूप से मैं जो अभी लीला बताई अंजनों की, अंजन बिहारी जी ब्रजरोटी शिला में से काजल प्रकट किया भगवान ने, इसलिए उनको अंजन बिहारी जी कहते हैं, राधा रानी को राधा रानी अंजन बिहारी जी ऐसे पुकारते हैं। तो वहां पर वो जो दौड़ दौड़ के आ रही है, विलंब हो रहा है, तो उस विलंब में जो उत्सुकता होती है उस भाव को कहते हैं विशुद्ध खंडिता भाव। और इस भाव का जब निर्माण होता है राधा रानी के व्यक्तित्व में, तो ललिता जी उसको बहुत सुंदरता से मैनेज करती है। हम सबने अनुभव किया है कि जब हमें कुछ देर होती है कि शादी के मुहूर्त में देर हो रही है, बारात लेट चल रही है, तो जो मन में धकधक होती है, उत्सुकता होती है, उसको कहते हैं विशुद्ध खंडिता भाव। वो हमारा तो वैसा नहीं है, लेकिन जब राधा रानी और कृष्ण के मिलन में देर होती है, विलंब होता है, तो ये दिव्य भाव निर्माण होता है। तो इस दिव्य भाव को मैनेज करने में ललिता बहुत कुशल है, ये उसकी एक सेवा है। दूसरी सेवा ये है कि जब युगल जोड़ी मिलते हैं राधा और कृष्ण श्याम सुंदर जी, तो जब लीला करते हैं, नृत्य करते हैं, तो उनके कभी कभी कपाल प्रदेश पर दिव्य अंगों में स्वेद बिंदु निर्माण होते हैं। तो लिखा है कि ललिता देवी निरंतर इन स्वेद बिंदुओं को पोंछती रहती है। शी कीप्स ऑन वाइपिंग द स्वेट ड्रॉप स्वेद बिंदु विच अपियर ऑन द फेस बॉडी एंड फीट ऑफ राधा एंड माधव ड्यूरिंग देयर मीटिंग। ललिता के अंदर एक और वस्तु है, वो है सौरुद रस। सौरुद का मतलब है प्रिय मित्र बनना, सुरुद, और सुरुदता को सौरुद कहते हैं। तो सौरुद का मतलब क्या है कि कृष्ण राधा रानी को इतनी अच्छी दोस्त है, मराठी में कहते हैं मैत्रिण, इतनी अच्छी सहेली है उनकी कि ऐसी सहेली और राधा रानी की कोई नहीं है। इतनी निकट, इतनी अंतरंग और सब कुछ गुह्यम आख्याति पृच्छति जिसके साथ कर सकते हैं, हृदय की अंदर की बातें और दर्दों को वो उनके साथ शेयर कर सकती हैं, ऐसी ललिता देवी हैं। हाँ, शी इज इमर्स्ड इन अनडिवाइडेड एब्सॉर्प्शन, एकाग्र रूप से वो मग्न है किस चीज में, राधा और कृष्ण, खास करके राधा जो उनकी निकट की सहेली है, उसके हृदय के इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वो एकाग्र रूप से मग्न रहती है। उसका अस्तित्व का, चेतना का हर कण हर क्षण राधा रानी को कैसे प्रसन्न किया जाए इस भाव में रहता है। और जैसे मैंने पहले कहा कि वो राधा रानी और कृष्ण को श्रृंगार करने में बहुत कुशल है, वो मयूरपुच्छ का वस्त्र पहनती है और वो वाम भाव शिक्षिका है। मतलब क्या है वाम भाव, मतलब टेढ़ा भाव, उल्टा स्वभाव। उल्टा स्वभाव क्या होता है कि राधा रानी के ऊपर हमेशा कृष्ण आतंक करते रहते हैं, हावी हो जाते हैं उसके ऊपर। तो राधा रानी बहुत भोली है, भोली गोपी राधे राधे, उनको बहकाना रुलाना बहुत आसान है, उनको चीटिंग करना, कह के कुछ अलग करना, ये कृष्ण का वाम स्वभाव है। तो उस वाम स्वभाव को, टेढ़े स्वभाव को वाम भाव से ही प्रत्युत्तर देने के लिए राधा उनकी ललिता उनकी ट्रेनिंग देती है उनको, इसलिए उनको कहा गया है वाम भाव शिक्षिका। तो राधा रानी को अपने आत्मसम्मान को कैसे बनाए रखना है, कृष्ण के उच्छृंखल व्यभिचारी व्यवहार को कैसे डिफीट करना है उसकी शिक्षा देते रहते हैं। और जब कृष्ण आतंक कर ही देते हैं तो अपने तेज तर्रार स्वभाव से, तेज स्वभाव से वो कृष्ण को डिफीट करती है, राधा रानी को शील्ड करती है। शी प्रोटेक्ट्स राधा रानी लाइक अ शील्ड व्हेन कृष्णा वांट्स टू ट्रबल हर। और वृंदा देवी जैसे दिव्य दिव्य देवियों के सहायता से वो सदैव राधा और कृष्ण के मिलन की दिव्य व्यवस्था करने में व्यस्त रहती है। ऐसी ललिता देवी, उनकी क्या क्या सेवाएं हैं उसके बारे में हम विचार करेंगे। प्रधान सेवा जो है वो पुष्प सेवा है, नहीं तांबूल सेवा है, यानी जुगल जोड़ियों के होठों के ओष्ठ कमलों के आनंद के लिए वो विविध प्रकार से सुंदर सुंदर दिव्य तांबूलों की व्यवस्था करते हैं। तो कल हम शाम को इस तांबूल पर चिंतन कर रहे थे कि तांबूल में क्या क्या होता है। तांबूल में वो बीड़ा का पान होता है, उसके अंदर गोला यानी कोकोनट श्रेड कोकोनट होता है, जो कोकोनट हम लोग पीसते हैं ना उसको, वो होता है। फिर उसमें किशमिश होता है, उसमें इलायची होती है, उसमें गुलकंद होता है, उसमें बड़ी शोक होती है, उसमें लौंग होता है। और इन सबसे अधिकतर वो सब सामान इकट्ठा करके उसमें भर देते हैं, उसका एक कोन बना देते हैं, इसे पिरामिड जैसे बना देते हैं। राधा रानी के मंदिर में भी एक दालन है, एक कमरा है विशेष राधा रानी के दर्शन के राइट साइड में, उसमें ये ललिता के भाव में कोई गोसाई बैठकर निरंतर ये पान बीड़ा बनाते रहते हैं, इसको गोविंद बीड़ा भी कहते हैं। तो राधा रानी और कृष्ण के आनंद के लिए भोजन के पश्चात वो आरोपते हैं उसको। तो ये तांबूल सेवा में राधा रानी के और श्याम सुंदर के ललिता जी सर्वोत्कृष्ट और सर्वकुशल हैं। उसके बाद उनकी प्रधान सेवा आती है पुष्प सेवा। ये जो पुष्प सेवा है इसमें कई प्रकार की पुष्प सेवाएं होती है, जैसे पुष्प मालाएं बनाते हैं, पुष्प वितान यानी कमान, कमान युक्त जैसे शादी में होता है ना कमान युक्त एंट्रेंस बनाते हैं, उसमें फूलों की लड़ियां लटकती रहती हैं, ये उसको पुष्प वितान कहते हैं, आर्च लाइक सिचुएशंस। फिर पुष्प मंडप, पूरा जो मंडप है वो पुष्प का बनता है, जैसे फूल बंगला बन कहते हैं हम, बिहारी जी का, राधा रानी का, राधा वल्लभ जी का और राधा रमन जी का, बहुत ही विशेष रूप से अनुपम फूल बंगले बनाए जाते हैं। वो उस कला में ललिता बहुत निपुण है। वो पुष्प की शैया, राधा कृष्ण को शयन करने के लिए जो बनाते हैं पुष्पों की शैया, सुगंधित पुष्प और फूल के स्वर से बनती है वो, उसको बनाने में ललिता बहुत कुशल है। पुष्प अलंकार यानी कुंडल, कलाईबंद, बाजूबंद, पायल, गले की मालाएं, बालों के लिए मालाएं, ये सब कुछ बनाने में ललिता देवी बहुत कुशल है। यहाँ तक कि पुष्प ग्रह बना देती है, पूरा पूरा वन भी पुष्प का बना देती है। और बाद में सबसे उत्तम यानी पुष्प अभिषेक, रंगी बिरंगी और सुगंधी फूलों से वो राधा और श्याम सुंदर का अभिषेक भी करती है। उनकी तीन प्रधान मंजरियां हैं सेविका, और हर एक सखी की आठ सखियां हैं, वैसे ललिता की भी आठ सखियां हैं, लेकिन प्रधान जो मंजरियां हैं वो है रूप मंजरी, लबंग मंजरी और अनंग मंजरी, जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और जानवा देवी के रूप में प्रकट हुई हैं। इस प्रकार से ललिता देवी राधा रानी के हाथों पर मेहंदी रचाने में भी बहुत कुशल हैं। और ललिता देवी के गाँव में ये मेहंदी शिलाएं, जिसको चित्र विचित्र लीलाएं कहती हैं, ये ललिता के गांव में है। एक छोटी सी लीला है, जैसे राधा रानी को मेहंदी का श्रृंगार करके वो भेज देते हैं और कृष्ण समय पर नहीं आते हैं, तो राधा रानी रूठ जाती हैं और रूठ कर वो सखी गिरी ललिता की पर्वत पर बैठ बैठ जाती हैं। और वो हमने कई बार देखा है बचपन में, जैसे किसी बालिका को अगर क्रोध आता है या वो नाराज हो जाती है, मान कर बैठती है, तो अपने हाथ जो है ना वो ऐसे 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 जमीन पर घिसते हैं, हाँ ऐसे ऐसे जमीन पर घिसते हैं और अपना जो असंतुष्टि है उसको प्रकट करते हैं। राधा रानी ऐसे पूरे हाथों को पैरों को मेहंदी लगाई है उन्होंने, और पैर के तलवे और हाथ के तलवे दोनों ऐसे पत्थर पर घिस रही हैं क्रोध से, सब अपने श्रृंगार को मेहंदी को उतार रही है, तो उनके भाव की उत्कटता से और गर्मी से वो पत्थर भी पिघल जाते हैं, और वहां पर हाथ में मेहंदी के नक्शे बनाए थे वो सब नक्शे उस पत्थर के शिलाओं पर आ जाते हैं, उसको चित्र विचित्र शिला कही है, मेहंदी शिला भी कही है। ऐसे कई जगह पर सखी गिरी पर राधा रानी के हस्त चिन्ह हैं मेहंदी की रचना के साथ। और इन्हीं के गांव में, ललिता जी के गांव में, राधा रानी जैसे उधर काम्यवन में फिसलन शिला है ना, स्खलन शिला कहते हैं उसको, वो सब ग्वाल बाल वहां पर स्खलन करते हैं, यानी कि घसरगुंडी करते हैं। तो राधा और कृष्ण मिलकर घसरगुंडी कहाँ करते हैं, वो सखी गिरी पर एक सुंदर शिला है, वैसे ही शिला है, उस पर राधा रानी और कृष्ण को मेहंदी लगाकर उनके पैर के तलुओं को, हाथों को, सब जगह पर मेहंदी की श्रृंगार करते हुए उनको बिठाते हैं और उनको छोड़ देते हैं। तो वो चौक दोनों फिसल जाते हैं, और जब आगे जाते हैं तो एक शिला उनको रोकती है, और जब उनके दोनों के चरण कमल जुगल जोड़ी जब जाकर वो शिला को जाके लगते हैं, तो उस भाव के वजह से उन शिलाओं पर उनके चरणों के चिन्ह निर्माण होते हैं मेहंदी के नक्शे के साथ। तो वो स्खलन शिला और वो उनके चरणों की मेहंदी शिला, वो भी ललिता जी के गांव में विराजमान है। ललिता जी की बात चली रही है तो हम चलते हैं सांकड़ी की ओर। तो ये जो बरसाना धाम है, हम कल भी विचार कर रहे थे इसके बारे में, इसके अंदर प्रवेश करने के लिए बहुत ही नम्र और सखी भाव होना चाहिए। सखी भाव यानी सेवा भाव। राधा रानी का संपूर्ण अस्तित्व ही सेवा है और जीवों के प्रति करुणा है, लेकिन स्वयं के लिए उनका पूरा अस्तित्व सेवा में व्रत है। तो बरसाने में अगर किसी को प्रवेश करना है, इस भाव में प्रवेश करना है, तो ये सेवा भाव के बिना हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उसका एक बाह्य प्रमाण है कि श्री कृष्ण भी और सभी देवताएं भी स्त्री बनकर, गोपी बनकर, सखी बनकर, लहंगा फरिया धारण करके वहां प्रवेश करते हैं। तो बरसाने की चार खूबियां हैं। ये बरसाना क्षेत्र जो है वो राधा रानी की राजधानी है, विश्वानु महाराज की राजधानी है, और खोर, खिरक, गिरी और गहवर, ये चार वस्तुएं हैं, ये बरसाने की विशेषता है। इन चार वस्तुओं से बरसाना बना, जैसे वृंदावन भूमि यमुना और गोवर्धन पर्वत से इसे वृंदावन बना हुआ है, जैसे बरसाना खोर, खिरक, गिरी और गहवर, इन चार चीजों से बना हुआ है। तो खोर का मतलब है दो अर्थ होते हैं, खोर का मतलब जलाशय भी होता है, और खोर का यहाँ पर अर्थ है गली। तो एक वहां पर एक सांकरी खोर है, सांकरी गली कहते हैं उसको, छोटी सी गली है, पतली सी गली है, इतनी सी गली है कि दो पर्वत जहां मिलते हैं वहां पर वो बनती है, और एक जगह से एक दिशा में एक समय एक ही व्यक्ति प्रवेश करता है, जा सकता है, एक दिशा में एक व्यक्ति एक समय प्रवेश कर सकता है, या इस तरफ या उस तरफ, दोनों तरफ नहीं जा सकते। तो वो सांकरी कोर है, और खिरक का मतलब है बहुत सारे जलाशय हैं, गौरी कुंड है, धोनी कुंड है, विश्वानु कुंड है, चित्तिदा कुंड है, और पीली पोखर है, प्रेम सरोवर है, ऐसे बहुत सारे जलाशय हैं जिसके तले, जिसके तट पर राधा कृष्ण, गोपियां, ग्वाल बाल सब लीला करते हैं। और गिरी यानी कि बहुत बृहत स्यानु, यानी बहुत सुंदर दिखने वाली, वर स्यानु, इसकी चोटियां बहुत सुंदर हैं, ऐसे चार चोटियों वाला पर्वत वहां पर है ब्रह्मगिरी, ब्रह्मा जी स्वयं तपस्या करके वहां पर पत्थर बने हुए हैं। विश्वानुपुरम गत्वा ममोपरि क्रीड़ा करिष्यसि, वो ब्रह्मा जी भगवान को कहते हैं कि आप हमें हमारे शीश पर लीला कीजिए। तो कृष्ण कहते हैं विश्वानुपुरम गत्वा, विश्वान में जाओ, वहां पर पत्थर बनो, फिर आपकी शीश पर हम लीला करेंगे। तो इस पर्वत के शीश के ऊपर कृष्ण भगवान राधा रानी के साथ लीला करते हैं। और गहवर, और गहवर ये विशेष चीज है जिसको भी हम बताना चाहेंगे, ये गहवर वन जो है, नामी गहीवर है, यानी कि ओवरवेलमिंग इमोशन, गहीवर, ओवरवेलमिंग इमोशन, जो भाव विभोर था वो गहीवर कहते हैं, मराठी में कहते हैं गहीवरो निर्णयी, हाँ गदगद होना, उसको गहीवर कहते हैं। तो इस नाम का वन है जो श्री जी के महल से भानुगढ़ से शुरू होता है, और चित्रा सखी का जो गांव है चिकित्सवन, चिकसोली, उसके अंत तक इसका विस्तार है। और इस गहवर वन की विशेषता यह है कि राधा रानी स्वयं इस गहवर वन को बनाती है, इसमें जितने भी वृक्ष हैं, जितने भी वेलियां हैं, उस सब वो स्वयं अपने दिव्य कर कमलों से उनको रोपित करती हैं, फिर सिंचित करती हैं, फिर लालन पालन करती हैं, देखभाल करती हैं, और इस वन को खुद के निर्देश में खुद से हाथ से बनाती है और संभालती है, ये इसकी विशेषता है। जैसे हमारा मायापुर जो है वो राधा रानी के द्वारा अपने हाथ से बना हुआ है, तो राधा रानी के गहवर वन और मायापुर में समानता है, क्योंकि ये दोनों राधा रानी के प्रेम से, राधा रानी की कला से बने हुए हैं, जिसमें कृष्ण आकर्षित होकर आए, और कृष्ण ने वहां पर कहा कि मैं यहीं पर रहूंगा, मेरे संतों को और भक्तों को लेकर रहूंगा। वैसे मायापुर धाम है, वैसे भी ये अंतरंग धाम है, यहाँ पर सबको प्रवेश नहीं है, मायापुर में तो औदार्य धाम है, और गहवर वन समान वन होने पर भी वहां पर सभी पतित जीवों को भी प्रवेश है, और यहाँ पर ये एकांत वन है, घेवर वन। तो ये घेवर वन जो है इसमें लता पताओं को सब राधा रानी संभालती है, और बालक बालकपन में जब उनकी बाल्य लीला होती थी तो इस घेवर वन की वेलियों का कन्या समझकर वृक्षों से जो पुरुष समझकर उनका विवाह कराती थी गोपियां सब मिलकर। सो दे यूज्ड टू अरेंज मैरिजेस बिटवीन क्रीपर्स एज लेडीज एंड ट्रीज एज मेन एंड रेगुलरली दे वुड प्ले गेटिंग देयर वेडिंग डन। इस प्रकार से लीला वो करते थे वहां पर। तो घेवर वन कैसा है, घेवर वन पर ललिता जी की विशेष सेवा है क्योंकि घेवर वन सब वितानमय है। घेवर वन मीन्स वितान, एवरीथिंग इज आर्च लाइक, सब कुछ चीज वहां पर कमनीय रूप में होती है, और वो कमनीय रूप में सारे वेली सारे पत्रावली पुष्पावली सब झूलते रहते हैं। हम उसको कितना वर्णन करें, क्या समझे, कैसे दृश्य को आंखों के सामने लाए, लेकिन हम जब मानगढ़ जाएंगे तो मानगढ़ की सीढ़ियां भी वो कमान से बनी हुई है, उस पर वेलियों को लगाया गया, तो वेलियां उस पर चढ़ती हैं और उनमें से फूल लटकते रहते हैं, और वो हम तो देखते हैं बहुत बहुत विरल विरल होते हैं, लेकिन कृष्ण के समय पर वो बहुत सघन हुआ करते थे। जैसे वृक्ष सघन वृक्षावली पत्रावली, हाँ जैसे वेली की सघनता वहाँ पर हुआ करती थी, तो सारी वस्तुएं सारे रस्ते सारी पतली गलियां जो है वो कमनीय हुआ करती थी, सब कमानों से भरी हुआ करती थी। तो स्वामी हरिदास जी जो बांके बिहारी को उन्होंने प्रकट किया था, जो ललिता जी के अवतार मानते उनको, तो स्वामी हरिदास जी बड़े संगीतज्ञ थे और बड़े कवि भी थे, बड़े सिद्ध भक्त थे, निधि वन में भजन करते थे। तो उन्होंने भजन लिखा है इस घेवर वन के विषय में, हाँ प्यारी जू आगे चल घेवर वन भीतर। कैसे जा रहे हैं, राधा रानी और कृष्ण एक दूसरे का परस्पर श्रृंगार कर रहे हैं, इसको कहते हैं परस्पर श्रृंगार लीला। कई जगह पर उन्होंने परस्पर श्रृंगार किया है, जैसे भांडीरवन में विवाह हुआ था तभी भी किया है, और संकेत वन में किया है, और कामे वन में किया है, बरसाने में कई बार किया है, घेवर कुंड के किनारे किया है। तो ये जो घेवर वन में वो राधा रानी को श्रृंगार करके ललिता वृंदा देवी विशाखा सब लोगों ने व्यवस्था करके उनको छोड़ दिया। अभी ये निभृत निकुंज है, यानी क्या, एक होता है वृंदावन, एक होता है ऐसे चार प्रकार के वृंदावन है जो कैसे और इंटीमेट और इंटीमेट और अंतरंग और गुहितम हो जाते हैं। तो पहले वाले में सब लोग मिलते हैं, दूसरे वाले में केवल कुछ गिनी चुनी 64 गोपियां मिलती है, उसके आगे में वाले में केवल अष्ट सखियां मिलती हैं, और उसके आगे वाले में केवल राधा और कृष्ण मिलते हैं, उसको निभृत निकुंज कहते हैं, निभृतम निकुंज कहते हैं। जैसे वृंदा कुंड में भी एक गुप्त कुंड है, वहां पर केवल राधा और कृष्ण ही मिलते हैं। तो फिर ये सब लोग उनको छोड़ देते हैं, फिर वो दो अंदर सब पुष्प शैया पुष्प वितान पुष्प मंडप पुष्प गृह सब तैयार है, वहां पर पुष्प कुंज पुष्पों का श्रृंगार सब बनाया हुआ है ललिता के निर्देश में। और अभी अपने दाहिने हाथ में राधा रानी का बाया हाथ पकड़कर राधा रानी को वो घेवर वन में प्रवेश करा रहे हैं। कैसे प्रवेश करा रहे हैं, बाएं हाथ से, अपने बाएं हाथ से वेलियों को सवार रहे हैं, यानी को जो सब जगह फैली हुई है जमीन तक फैली हुई है, बह रही है वे वेलियां सब, क्रीपर्स आर फ्लोइंग अप टू द ग्राउंड, तो जाने के लिए भी रास्ता नहीं, इतनी सघन वेलियां वहां पर बिछड़ी हुई है। तो कृष्णा एक हाथ से उन वेलियों को सवार रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं, और एक हाथ से राधा रानी को अंदर प्रवेश कर रहे हैं। प्यारी जू आगे चल आगे चल घेवर वन भीतर, जहां बोले कोयल री राधे जू, कह रही है चलो राधा रानी अंदर प्रवेश करो। इसके अंदर बहुत सुंदर दृश्य है, सुंदर पुष्प है, पुष्प शैया बनी हुई है, और सुंदर सुंदर मधुर मधुर कोयल जो है वो गा रही है, आपको पुकार रही है, हम दोनों को पुकार रही है, चलो अंदर चलो। प्यारी जू आगे चल घेवर वन भीतर, जहां कोयल बोली री, जहां बोले कोयल री। तो ये हुई घेवर वन की बात, और इस घेवर वन में सबसे अपने अंतरंग जो भाव है वो राधा रानी कृष्ण के साथ प्रकट करती है, क्योंकि वे पूर्ण एकांत है, कोई गोपियां भी नहीं है। ये घेवर वन में आसपास में 5 रास मंडल है, ये सब अभी छुप गए हैं, लेकिन वो घेवर वन जहां पर है उसमें मान मंदिर भी उसमें आता है, मान मंदिर की सीढ़ियों के नीचे है ये, जैसे एक सीढ़ियों के इस तरफ है, एक सीढ़ियों के इस तरफ है, और एक जो मोरकुट की छोटी पहाड़ी है उसके रास्ता में है, उसमें महारानी का सिंहासन भी है, बैठने की जगह भी है, रास मंडल है, वहां पर बहुत सिद्ध संतों ने भजन किया हुआ है, जैसे हरिश्चंद्र बाबा, मौनी बाबा और रणछोड़ दास जी बाबा, ऐसे बहुत बहुत महान बरसाना के गहवर मन के संतों ने वहां पर एकांत उत्कट भोजन अन्न ग्रहण न करते हुए भोजन किया, भजन किया है। और वहां पर राधा रानी आकर उनसे बातें भी किया करती थी। तो फिर बीच में आता है गहवर कुंड, वो गहवर कुंड ब्रह्मा जी की नाभि कहलाया है और वो देवताओं को भी आनंद देने वाला है। बहुत ही गहरा, बहुत ही पवित्र पवित्र वृक्षों से भरा हुआ, सघन वृक्षावलियों से आच्छादित वो एक सुंदर वन है। बहुत सुंदर सुंदर रत्नों से भरी सीढ़ियां बनी हुई है और राधा रानी वहां पर हर रोज अपने चुने हुए 64 सखियों के साथ में स्नान करती है। देवता गंधर्व तो गंधर्वों को भी आह्लाद देने वाला है, ऐसा वो गहवर कुंड है, जिसको राधा सरोवर भी कहते हैं। और उसमें जब राधा रानी अपने 64 सखियों के साथ में स्नान करती है तो ग्वाल बाल मोरकुटी से लड्डू फेंकते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं, ऐसे लीला है वहां पर। वहीं पर मधुमंगल को सब गोपियों ने बैठकर उनका सेवा किया था, उनको जब पकड़ा था उन्होंने तो मधुमंगल ने ब्राह्मणत्व का वास्ता दिया था, तो सब गोपियां डर गई थी। तो गोपियों ने उनको पूछा, क्या करें आपके लिए, हमसे ब्राह्मण का अपराध हो रहा है। उन्होंने कहा, ठीक है सब जाके लड्डू बना के ले आओ। तो उनको विविध प्रकार के लड्डुओं का ढेर लगाकर भोग लगाया था, उनका पूजन किया था। उन्होंने उनको धमकी भी दी थी कि आपने हमको पकड़ा है, हमारा अपमान किया, हमको मारने का प्रयास किया है, आपका विवाह सब लोगों का ऐसे व्यक्ति से होगा, सब लोगों का, जिसकी जो बुढ़ा होगा और जिसकी आठ आठ पहले पत्नियां होंगी और हर पत्नी आपसे झगड़ा करेगी, रोज का झगड़ा बना रहेगा, कलह बना रहेगा आपके लिए। तो डर के मारे सब गोपियों ने लड्डू खिलाए, उनका पूजन किया, लड्डू से खाकर संतुष्ट होकर मधुमंगल ने राधा रानी को सबको आशीर्वाद दिया कि आपका विवाह युवा व्यक्ति से होगा और जो आपके मन में बसा है उसी के साथ में आपका विवाह होगा, ऐसे उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो वो सुंदर गहवर कुंड में वो सिंहासन है जहाँ पर मधुमंगल को विराजमान किया था, और वही गहवर कुंड है जिसके किनारे दुर्वासा मुनि आए थे और राधा रानी वहां पर खेल रही थी और मिट्टी मिट्टी से बना हुआ खाना बन रहा था, और राधा रानी ने वो क्रोधित दुर्वासा मुनि को वो मिट्टी से बनी हुई खीर खिलाई, मतलब मिट्टी खिलाई, और राधा रानी के सम्मोहन भाषण से प्रभावित होकर जो पहले गोपियों से क्रोधित हो गए थे, लेकिन राधा रानी जब आग्रह किया, खा तो लो, थोड़ा सा खा लो, क्या जलाने वलाने की बात कर रहे हो, भस्म कर दूंगा, थोड़ी खीर तो खा लो। और जब उन्होंने खीर को प्राशन किया, ऐसे सम्मोहित होकर, भ्रमित होकर कि उन्हें दिव्य खीर चावल की बनी हुई खाने का अनुभव हुआ, आंखों से अश्रु आए, शरीर पुलकित हो गया, तो उन्होंने आशीर्वाद राधा रानी को इसी गहवर कुंड के किनारे दिया था कि आपके हाथ से जो भी भोजन करेगा वो आपके हाथ का जो भोजन होगा वो अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट होगा, और जो भी व्यक्ति इसको भोजन करेगा वो चिरंजीवी हो जाएगा, रोग से मुक्त हो जाएगा और वो सदैव विजयी होगा, ऐसे उन्होंने वरदान दिए थे। तो उसके बाद में फिर आगे की सब लीलाएं आरंभ हुई। उस वरदान की वजह से यशोदा देवी प्रभावित हो गई, लालायित हो गई, उन्होंने राधा रानी को परमिशन पूछा कीर्ति मैया से, वो रोज का बरसाना नंदगांव आना जाना शुरू हो गया और पावन सरोवर के तले कुआं बनाकर यशोदा माई ने राधा रानी को रसोई घर बना दिया और वहां से राधा रानी रोज जाकर उनको भोजन बनाती। आज मैंने सोचा कि संक्षेप में क्यों ना हो, लेकिन कुछ भक्तों का और राधा रानी का जो आदान प्रदान है उसके बारे में बताएं आपको। उसमें हमारे गुरुदेव भी आते हैं और गुरुदेव उन्होंने तो इतनी दूर यात्रा की बिना वाहन के, पैदल चलते हुए, बोट पर बैठे हुए, कभी ट्रक के ऊपर बैठे हुए, बहुत लंबी लंबी यात्रा की, वृंदावन पहुंचे। वृंदावन के बाद में घनश्याम बाबा के उनका परिचय हुआ था। घनश्याम बाबा की राधा रानी का संबंध कैसे हुआ था? घनश्याम बाबा जमुना जी के रेत में बैठकर श्री राधा लिखा करते थे, फिर उसको मिटा देते थे, फिर श्री राधा लिखते थे रेत में, फिर उसको मिटा देते थे। तो जब अनंत बार लिखा ऐसे, अनंत दिनों तक, तो एक बार ऐसे लिखा और मिटाया तो हाथ को कुछ नोकदार वस्तु का स्पर्श हुआ, तो उन्होंने देखा तो एक नोकदार वस्तु जो है वो अनंत बार उसको पहुंचने से जो बालुकाएं यहाँ से वहां गई थी उसमें से वो नोकदार वस्तु प्रकट हुई। तो उन्होंने उसका खोदन किया तो क्या मिला उनको? राधा गोपीजन वल्लभ के विग्रह प्राप्त हुए। यमुना जी के रेत से। और ये गोपी जन वल्लभ के विग्रह कैसे पता चला? कृष्ण के विग्रह के नीचे स्टैंड पर गोपी जन वल्लभ लिखा हुआ था, उसके बाजू में राधा रानी के विग्रह भी विराजमान थे। इस तरह से घनश्याम बाबा को राधा रानी का साक्षात्कार हुआ। राधा रानी ने स्वयं आकर दर्शन दिया और राधा रानी और गोपी जन वल्लभ के विग्रहों को उन्होंने आजीवन उनकी सेवा की। उनकी बहुत सुंदर लीलाएं राधानंद महाराज के साथ में अनोखा सफर इस किताब में लिखी हुई है। तो इन्हीं घनश्याम बाबा ने उनके साथ जितना भी राधानाथ स्वामी महाराज का रिचर्ड स्लाविन एक युवा अवस्था के बालक का युवा अवस्था के व्यक्ति का संग हुआ, उसके बाद में घनश्याम बाबा ने राधानाथ स्वामी महाराज को कहा कि कृपया आप आगे की प्राप्ति करने के लिए बरसाना जाइए। और बरसाना जाकर वहां पर राधा रानी को पुकारिए और आंखों में आंसू लेकर कहा कि मेरा भी दंडवत स्वामी जी के चरणों में आप पहुंचा देना। मुझे याद है 1986 की यात्रा में राधानाथ महाराज ने ये कहानी बताई थी कि किस तरह से भावुक होकर आंखों से आंसू लेकर घनश्याम बाबा ने कहा था कि मेरा प्रणाम राधा रानी के चरणों में आप पहुंचा देना। फिर वहां महाराज वहां से चरण पैदल निकले हैं और जब वो श्री जी के मंदिर से लेकर मान मंदिर तक चल रहे थे तो उनको दिव्य अनुभव आए, दिव्य आध्यात्मिक अनुभव आए, जिसके वजह से उनको जो खोज थी वो खोज प्राप्त होने की आशा उपजी गई। फिर 6 महीने उन्होंने मान मंदिर में बरसाने में निवास किया और उस 6 महीने के निवास में राधा रानी और कृष्ण के विषय में उनको अनुभूतियां जो हुई वही उनके पूरे आध्यात्मिक जीवन की नींव बनी। और राधा रानी का कैसा वहां पर कृपा रही उनके ऊपर कि वहां के जो ब्रजवासी हैं वो आज जो खुद ही 60-65 साल 70 साल के हो गए हैं, लेकिन उस समय वो सब लोग 5-10 साल के थे, कुछ 15 साल के थे, कुछ 20 साल के थे, वो सब अभी भी वहां पर उपस्थित हैं और बड़े स्नेही हैं हमारे महाराज के सबके। तो उन्होंने एक विशिष्ट बात कही थी उनके वहां के वास्तव के बारे में कि ये जब वहां पर आए थे तब उनकी आंखें इस प्रकार से थी रिचर्ड स्लाविन की कि कुछ खोज रही थी, हाँ ऐसे बहकी बहकी सी खोजती हुई कुछ कुछ ढूंढ रहे हैं। और जब यहां से गए और जब अभी उनको देखते हैं तो उनकी आंखों में ये भाव है कि वो जो ढूंढ रहे थे वो मिल गया उनको। ये परसेप्शन है उन लोगों का जो उनको देख रहे हैं, महाराज स्वयं नहीं कह रहे हैं, जिन्होंने उनको देखा था और देख रहे हैं वो कह रहे हैं। तो ये राधा रानी का और महाराज जी का घनश्याम बाबा का आदान प्रदान है। उसके बाद में बहुत सारी कहानियां, लेकिन देखते हैं समय कितना है। हम जानते हैं श्यामानंद गोस्वामी जब भी अंबिका कालना में गौरीदास पंडित के शिष्य हृदय चैतन्य महाराज, जिनके हृदय में चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु विलीन हो गए थे, छुप गए थे, उनसे इन्होंने दीक्षा लिया था। उनका नाम था दुखी कृष्ण, तो उनका नाम सुखी कृष्ण रख दिया था। और वो वृंदावन आए थे और हृदय चैतन्य ने उनको, महाराज जी ने उनको जीव गोस्वामी के आश्रम में भेजा था आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, वैष्णव बनने के लिए, वैष्णव की परिमा गरिमा प्राप्त करने के लिए। तो वहां पर वृंदावन की सड़कों में ना बुहारी करते थे। बुहारी यानी कि हमारी भाषा में झाड़ू लगाना, स्वच्छता करना, तो भंगी का काम होता है। जो सबसे न्यून काम भौतिक दुनिया में होता है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ काम आध्यात्मिक दुनिया में होता है। तो बुहारी करते थे रोज वृंदावन की गलियों का, पूरे रज के रज ऊपर उड़ती थी, रज में वो स्नान किया करते, रजोभिषेक हुआ करता था, ऐसे ब्रह्ममाण होकर आंखों में आंसू लेकर वो ब्रज की गलियों को बुहारते थे। तो एक दिन उनको बुहारते बुहारते एक पायल मिला, पेंजेंट, तो बड़ा उसका तेज देखकर उसका आभा देखकर बड़े प्रभावित हो गए। और ये सोच ही रहे तब तक एक कन्या आई, बहुत सुंदर कन्या आई, कहे कि हमारी स्वामिनी का पायल मिला क्या आपको, यहाँ खो गया था। तो वो भी समझ जाते कि कोई दिव्य रहस्य है इसके अंदर। तो वो कहते हैं कि ऐसा है, मिला है मुझे और मैं तब दूंगा जब वो जिनका है वो ही आ जाएगी यहाँ पर, आपकी स्वामिनी को ले आओ। फिर वो कन्या ललिता थी, राधा रानी की प्रथम सहेली, वो जाती है और कुछ देर बाद में अष्ट सखी वृंद को लेकर आती है राधा रानी के साथ में। और वही वृंदावन के कुंज में राधा रानी सिंहासन में विराजमान हो जाती है और वो दिव्य दृष्टि जो है राधा रानी का दर्शन का इनको प्राप्त होता है। और जैसे ही ये दर्शन प्राप्त होता है, राधा रानी का दर्शन प्राप्त होता है, वो दंडवत करते हैं। दंडवत करते ही अपना जो गोपी मंजरी स्वरूप है, कनक मंजरी स्वरूप जो है, ये उनको तत्काल वहां पर प्राप्त हो जाता है। वो श्यामानंद की पुरुष के शरीर से उनका रूपांतरित होकर वो कनक मंजरी बन जाते हैं, और कनक मंजरी के रूप में वो राधा रानी के चरणों में अपने आंसू बहाते हैं, अपना प्रेम निवेदित करते हैं। राधा रानी बड़ी ही प्रसन्न हो जाती है उनके भाव से, उनके घुंघरू उनको लौटा देते हैं, और वो घुंघरू जो है राधा रानी अपने हाथ में लेती है और उनके कपाल प्रदेश पर दबा देती है एक कृपा के रूप में, और उस घुंघरू के चिन्ह जो है उनके भाल प्रदेश पर तिलक के रूप में प्रकट हो जाते हैं। ऐसे कि वो मिटा नहीं सकते, जैसे हमारा तिलक हम मिटा सकते हैं पानी से, वो तिलक ऐसा बना देते राधा रानी कि वो मिट नहीं सकता है। फिर कहती है कि आज से आपका नाम सुखीदास नहीं, आपके नाम श्यामानंद होगा। और तीसरी बात, अपने हृदय से राधा रानी, राधा और श्याम सुंदर, खुद का और श्याम सुंदर जी का बहुत ही सुंदर विग्रह प्रकट करके उनको देती है कि आपको ये पूजना है। विश्व के इतिहास में आज तक वो एक ही ऐसा विग्रह है जो राधा रानी ने स्वयं अपने हृदय से प्रकट करके किसी भक्त को दिया है, राधा श्याम सुंदर जी। आज भी श्याम सुंदर जी के मंदिर में बड़ा जो विग्रह है वो ब्रजजनानंद गोस्वामी का है, जो सामने दिखता है आपको, उसके उनके बाएं, हमारे दाएं साइड में जो छोटा विग्रह है वो राधा श्याम सुंदर विग्रह साक्षात राधा रानी के हृदय से प्रकट हुआ है। और राधा रानी ने उनको ये भी बताया कि किसी को बताना नहीं है, ये गुप्त बात है हमारे आपके बीच में। और उसके बाद में ये बातें हुई और प्रेम का आदान प्रदान श्यामानंद जी के ऊपर हो ही रहा था, उसमें सब गोपियों ने होली खेलना आरम्भ किया, और इस गोपी को कनक मंजर को इतना भिगाया कि पूरा रंग बिरंगी रंग से अच्छा जो भाव में विभोर होकर बेहोश हो गई कनक मंजरी देवी। और फिर ये सब अंतर्धान हो गए और वो कनक मंजरी जो है वो फिर पुनः श्यामानंद के रूप में आई, लेकिन उसके ऊपर चुनरी ओढ़ी हुई थी और पूरे रंग में भरे हुए थे वो, भाव विभोर होकर बेहोश रहे कई समय तक। फिर घर लौट के आए तो सब लोगों ने देखा उनको कि अरे क्या तिलक लगा के रखा है नया, हमारा तो तिलक अलग है, इसका तो तिलक अलग लगाने लगा ये, और खुद को श्यामानंद बोलता है, विग्रह भी ले आया है। तो बहुत राधा रानी ने कहा है कि बताना नहीं आपको, किसी को बताते नहीं है, तो लोग समझते कि भ्रष्ट हो गई है। फिर एक खबर पहुंचती है उधर अम्बिका कालना तक पहुंचे, गुरु जी तक पहुंचे, गुरु जी क्रोधित होकर वृंदावन भाग के आते हैं और उसको इतना पीटते हैं। तो भक्त लोग आकर रोकते हैं, महाराज मत पीटो मर जाएगा ये, तो कैसे भी अपने आप को रोक लेते हैं। और रात को उनके स्वप्न में राधा रानी आती है और डांटती है हृदय चैतन्य को, जो मेरा भक्त है, मैंने उसको नाम दिया, मैंने उसको तिलक लगाया, मेरे विग्रह मैंने उनको दिए हुए हैं, क्या अधिकार है आपको उसको मारने का। रात को ही उठे वो हृदय चैतन्य महाराज जी और भाग के श्यामानंद की कुटिया में गए, उसके चरणों में गिरे, बोले मैं आपका गुरु नहीं हूँ, आप मेरे गुरु हो, मुझे प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। श्यामानंद जी विनीत होकर उनके चरणों में गिर जाते हैं। तो ऐसा बहुत ही उत्कट आदान प्रदान श्यामानंद जी के साथ में, श्यामानंद गोस्वामी के साथ में राधा रानी ने किया है। और एक आपको मैं बहुत सारे कल बताऊंगा, एक जरूर आज बताऊंगा, वो ये है कि एक तो पौराणिक और ऐतिहासिक राधा रानी का आदान प्रदान है, और एक है अभी हमारे 10-20 साल के अंदर का आदान प्रदान। वो ये है कि कोशी में एक बहुत सुंदर ब्रजवासी थे हमारे राधानाथ महाराज जी के, बड़े परम स्नेही थे, परम प्रेमी थे, पेशे से उनका बांस का व्यवसाय था, लेकिन वो बहुत सुंदर मिश्री कैसी होती है, मधुर मधुर ऐसे गाते थे, ब्रजवासी लोग भी उनको मिश्री करके पुकारते थे, इतना सुंदर गाते थे, इतना मधुर गला था उनका। आकाशवाणी में हर दिन कई 2500 सालों तक उनका 6:30 बजे आकाशवाणी में लोकगीत के अंदर उनके ही गायन, उनके ही गीत, ब्रज के गीत बजाए जाते थे। आज भी लोही बाजार के गार्डन मार्केट में खंडेलवाल जी और जो बांकीदारी का गली है वो, उनके सीडी और कैसेट मिलते हैं, इतने सुंदर भजन गाते थे वो, मधुर अति मधुर। लेकिन उनका एक भजन है वो इतना उनको खुद को प्रिय था और उनका गाया हुआ सुनने के लिए सबको अति प्रिय था, वो भजन था कि महल राधिका का बुहारा करेंगे, उन्हें आते जाते निहारा करेंगे। जब हमारी उनकी पहली मुलाकात हुई थी जेवर बन में, हम लोग राधानाथ महाराज के साथ में झूलन यात्रा के लिए गए थे 1989 में, उस बार पहले उनका वहाँ के साधु द्वारा परिचय किया गया था कि ये हमारे मदन मोहन ब्रजवासी, इनका सरनेम ब्रजवासी था, कोशी के थे लेकिन अभी विरक्त होकर उधर ही बसे थे मान मंदिर में आकर, उनका परिचय दिया गया कि अभी इनको सुनिए, ये तो पूरी मिश्री है, हम ज्यादा वर्णन नहीं करेंगे, मिश्री का आस्वादन हम खुद ही कीजिए। ऐसे कहकर उन्होंने सबसे पहले ये भजन गाया था, महल राधिका का बुहारा करेंगे, उन्हें आते जाते निहारा करेंगे, लगाएंगे जाकर कुंजों में बुहारी, हुआ भाग्य तो झाकी निहारा करेंगे। हा? और ये केवल गाने का गाने की बात नहीं थी, वो रोज इसको गाते थे और रोज मान मंदिर की पूरी सीढ़ियां बुहारा करते थे। वैसे बड़े बुढ़े हुए थे वो, जब भी कोसी छोड़कर जब भी आए थे वहां पर, तभी भी बहुत वृद्धावस्था में थे, लेकिन तभी 60-65 की थी, और 80-85 साल तक वो जिए, और हर दिन वहां रहकर ये हर रोज ये गीत गाते थे, हर रोज। हमने हजारों बार उनसे सुना है जब हम जाते थे वहां पर। महल राधिका का बुहारा करेंगे, उन्हें यानी राधा रानी और कृष्ण को, उन्हें आते जाते निहारा करेंगे, उन्हें आते जाते निहारा करेंगे। तो फिर बहुत साल, 15-20 साल 25 साल तक उन्होंने बुहारी लगाई, और 2014 में उनकी यात्रा शुरू हुई, 40 दिन की ब्रजमंडल यात्रा। तो वो रास पूर्णिमा के 3 दिन पहले शुरू होती है, तो रास पूर्णिमा के पहले 3 दिन तो बरसाने में यात्रा होती है, सब लोग बरसाने में जाते हैं, वहीं रहते हैं। तो ये उस दिन नहीं गए, वो अक्टूबर कुछ 16 तारीख थी 2014, और सब लोग दर्शन करने गए बरसाने का 3 दिन की यात्रा में, पहले दिन सेकेंड डे। तो सेकेंड डे ये कहे कि हम अभी नहीं आते हैं, कि आप जाके आओ, मैं अपनी सेवा करता हूँ, क्योंकि अगले फिर 37 दिन मुझे ये सेवा नहीं मिलने वाली है, हम यात्रा में जाएंगे तो बुहारी की सेवा छूट जाएगी, तो ये 3 दिन तो कर लेता हूँ। तो सब लोग चले गए और सुबह ये उन्होंने बुहारी करना आरम्भ किया, हाँ, गीत गाते हुए, महल राधिका का बुहारा करेंगे। क्या भाव था, यहाँ से राधा कृष्ण आएंगे तो उनके पैरों में कंकड़ नहीं लगना चाहिए, कोई कांटा नहीं लगना चाहिए, उनके पैरों को आनंद मिलना चाहिए, उनको पैरों में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। और फिर जब हम बुहारी करेंगे, हो सकता है वो आते जाते दिखाई पड़ेंगे, तो दर्शन भी कर लेंगे और बुहारी भी कर लेंगे। और उसी दिन सब लोग चले गए थे, कोई भी वहां पर नहीं था, सब लोग यात्रा में चले गए थे। तो ये मान मंदिर की सीढ़ी से पता नहीं क्या हो गया, गिर गए और वहीं शरीर त्याग दिया उन्होंने, वहीं उन्होंने प्राण त्याग दिया। तो सभी ब्रजवासी लोगों ने उस दिन कहा कि राधा रानी है, ये इसका प्रमाण है, ये जिंदगी भर तमन्ना करते रहे, प्रार्थना करते रहे कि हम आखिरी क्षण तक बुहारी करते रहे, आपके महल की आपके सीढ़ियों की बुहारी करते रहे। ये उनकी एक जीवन का लक्ष्य था उनका, कि ये बुहारी करते करते ही प्राण निकल जाए। और वास्तविक रूप में राधा रानी ने उनकी इच्छा पूरी की, और बुहारी करते करते ही हाथ में झाड़ू है उनके, और मुंह ऐसा जमीन पर गिरा हुआ है, खून से लथपथ है, और प्राण चले गए, लेकिन हाथ में झाड़ू है। बुहारी करते करते उन्होंने प्राण छोड़ दिए। इसका अर्थ यह है कि राधा रानी आज भी वहां पर हैं, और आज भी वहां पर कोई जाकर हृदय से कोई प्रार्थना करेगा, हृदय से, सरल हृदय से, निष्कपट भाव से, निस्वार्थ भाव से, तो राधा रानी के होने का और आपकी इच्छा पूर्ति के माध्यम से राधा रानी के होने का अनुभव आप सब लोगों को होगा, हम सबको होगा। वो जो स्थान है मान मंदिर, खैबर कुंड, खैबर बन, वो बहुत दिव्य स्थान है। वहां राधा रानी बरसाने के हर कण कण में निवास करती है। और वो जो एक मौनी बाबा थे, उनके साथ वो नित्य संवाद करती थी, और बाकी साधु लोग चुप चुप के सुना करते थे। और साधुओं का होने का जब अनुभव होता था मौनी बाबा को, तो वो गुस्सा करते थे, चिल्लाते थे उनके ऊपर, लेकिन जब वो मग्न होते थे बात करने में, तो वो उनसे राधा रानी से बात करते थे, किसी को दिखाई नहीं पड़ते थे, लेकिन उनको दिखाई पड़ते थे गैवर कुंड के किनारे में। ऐसा अद्भुत स्थान है जहां पर संत लोग भजन करते हैं, वहां पर राधा रानी कृष्ण भगवान अपने वृंदावन धाम का पूरा जो रहस्य है वो प्रकाशित कर देते हैं। इसलिए ब्रज में कभी भी किसी प्रकार का गलत काम, पाप नहीं करना चाहिए, तो उस स्थान का महिमा जो है वो लुप्त हो जाता है, उसको छुपा देते राधा कृष्ण। लेकिन जिस स्थान पर हम जाते हैं, भजन करते हैं, संत लोग बैठकर भजन करते हैं, संतों की तपोभूमि है वो, ध्यान भूमि है, भजन भूमि है, वहां पर उस धाम का जो पूरा गौरव है वो उस धाम में राधा रानी की कृपा से प्रकट हो जाता है, और हमें भी जाने से उसका अनुभव होता है कि ये धाम बहुत दिव्य है, वहां पर अति उत्कट लीलाएं उपलब्ध हैं। तो आगे की कथा हम कल करेंगे, संतों का और राधा रानी का जो आदान प्रदान है, दर्शन है, और आज के लिए यहाँ पर कथा को विश्राम देते हैं। तो किसी का कोई प्रश्न होगा तो युगल श्याम प्रभु जी उनके प्रतिनिधि के रूप में उस प्रश्न को पूछेंगे, और हम अपने सीमित सीमा के अंदर उसको कोशिश करेंगे उत्तर देने का। हरे कृष्ण।
Thank you very much for the wonderful class. We got one question here on the chat by Prajesh Gautam. Writing that, Prabhuji, yesterday you were saying that if we take shelter of Radha Rani's lotus feet, we will receive goal of our life, Shri Krishna. At the same time, we were passing off Srila Bhakti Siddhanta Saritapura Tadako, where he points out that the Gaudiya Vaishnavas worship Krishna because he is connected
to Radha Rani. ये भाव की बात है, ये भाव की बात है, ये एक प्रेमी के हृदय की बात है। वो ये है कि हम कृष्ण को केवल इसलिए पूजते हैं क्योंकि वो राधा रानी से संबंधित है, ये राधा रानी के अनन्य भक्तों का भाव है। इसका मतलब ये ना कि कृष्ण महत्वपूर्ण नहीं है, ये एक हृदय का एक्सप्रेशन है कि वी लव कृष्ण बिकॉज ही इज अटैच टू राधा रानी, अदरवाइज वी हैव नथिंग टू डू विद इट। बट सिद्धांत के रूप पर समझेंगे तो हम सब जानते हैं श्री कृष्ण हमारे जीवन के लक्ष्य हैं और वो राधा रानी के द्वारा ही प्राप्त हो जाते हैं, राधा रानी की वस्तु है वो, राधा रानी उसको पजेस करती हैं। और इसलिए ये भाव की बातें और सिद्धांत की बातों को मिक्सअप नहीं करना चाहिए। भाव जो होता है काव्यमय होता है और उसमें बहुत सारा काव्य होता है, बहुत सारी पोएट्री होती है, तो सिद्धांत जो है वो थोड़ा सा एक तरह से शुष्क जैसा होता है, वो नॉलेज के रूप में होता है। तो सिद्धांत को समझ कर ही आगे जाकर भाव को समझ सकते हैं। तो पहले सिद्धांत को समझना चाहिए, फिर भक्ति सिद्धांत गौड़िया महाराज जी ने जो बात की है उसके भाव को हम समझ पाएंगे। अगला प्रश्न क्या है?
सुदर्शन को पूछ रहे हैं कि भक्ति देवी कौन है?
भक्ति देवी दो उसके अर्थ हैं, एक भक्ति देवी स्वयं राधा रानी भी भक्ति देवी है और एक भक्ति देवी अलग भी प्रकट है राधा रानी का। राधा रानी का एक प्रकट्य है, राधा रानी का मूर्तिमान प्रकट्य भक्ति देवी का है, साक्षात भक्ति जिसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। तो कथा पुराणों में आती है, नारद मुनि के कथा में, भागवत महात्म्य में आती है। तो वो भक्ति स्वयं राधा रानी भी है और वो भक्ति देने वाली भी है और भक्ति देवी भी उनका ही विस्तार है। अगला प्रश्न पूछिए।
कृष्ण हरि को पूछ रहे कि राधा रानी की कृपा अपने ऊपर है।
कल मैंने बताया था ना, जो व्यक्ति जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीभीर ये सब कुछ होने के पश्चात भी नम्र रहता है और नम्रता पूर्वक अपने आप को प्रस्तुत करता है, उस पर राधा रानी की कृपा जानते हैं हम लोग। उस भाव को हम समझते हैं कि राधा रानी की कृपा है।
अरुण पाल नोएडा से पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा गुरुजी, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट डिवोटी हु वाज आल्सो
नोन
एज मिश्री?
हाँ, मदन मोहन ब्रिजवासी, बताया ना मैंने आपको, मदन मोहन ब्रिजवासी। राधा गोपी जन वल्लभ जी के दर्शन अभी मोती झील जो फोगला आश्रम के अंदर जाकर गोली में है और बहुत बड़ा कुंड है मोती झील, उसके पास में एक सरदारों का मंदिर है, राधा शायद द्वारकानाथ मंदिर नाम है उसका, उस मंदिर के अंदर वो राधा गोपी जन वल्लभ के विग्रह विराजमान है। और इस दास को यही सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि राधानाथ महाराज के आदेश से उसको हमने ढूंढ के निकाला था और एक समय यात्रा लेकर वहां पर गए थे। अगला प्रश्न कुछ
भक्ति वैभव को पूछ रहे हैं, डिड एनी ऑफ आवर गौड़ीय वैष्णव आचार्य हैज भजन कुटीर और समाधि एट दर्शन?
आई डू नॉट रिमेम्बर, बट देयर आर मेनी गौड़ीय मठ्स देयर, बट प्राचीन आचार्यों का भजन कुटी मेरे विचार से नहीं पता है मुझे। आई डोंट थिंक सो।
गीता गोखले मां पाते से पूछता, हरे कृष्ण प्रभु, ड्यूरिंग लॉकडाउन हाउ शुड वी सेलिब्रेट राधाष्टमी?
कल के दिन राधाष्टमी सेलिब्रेट करने के लिए घर में आप चीकू, अरबी, अनार के द्वारा बने पदार्थ बनाइए और राधा रानी को गुलाबी ब्लाउज ब्लाउज पहनाइए, नीला वस्त्र घाघरा धारण कीजिए, उनको सुंदर सुंदर फूलों से श्रृंगार कीजिए।